आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। प्रदेश के लगभग 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में प्रस्तुत किया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाती है ये समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए समानता संबंधी नियमों पर लगाई रोक। प्रतिष्ठित न्यायविदों की समिति द्वारा नियमों की समीक्षा का दिया सुझाव। और संपत्ति पंजीकरण में 1 फरवरी से लागू होगा आधार प्रमाणीकरण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को स्वीकृति मिल गई। बैठक में आगामी बजट सत्र को भी मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा।
9 तारीख को महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद 10 तारीख को चूंकि एक हमारे 2 माननीय सदस्यों का निधन हो गया, इसलिए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा और 11 तारीख को बजट आएगा वर्ष 26-27 का।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। एक रिपोर्ट।
कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों और उनके आश्रित परिवारों को सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष इसकी घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मी लाभान्वित होंगे। इलाज की दरें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि सरकार के फैसले से बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 12 लाख शिक्षक और कर्मी लाभान्वित होंगे।
कुल मिलाकर के 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति मिली है। इसमें एक व्यवस्था ये जोड़ी गई है और इसका जो कुल लागत है वो लागत भी आएगी इसमें 358.61 करोड़ की।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई। सीएम फेलोशिप वाले अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का भी फैसला लिया गया। कैबिनेट ने पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक समीक्षा को देश का रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया है। श्री मोदी ने कहा कि यह समीक्षा चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाती है। ये मजबूत व्यापक आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों, सतत विकास गति और राष्ट्र के निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और अवसंरचना की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक समीक्षा समावेशी विकास के महत्व पर बल देती है। इसमें किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों, युवा रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। एक रिपोर्ट।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जिसमें घरेलू मांग का महत्वपूर्ण योगदान है। निजी उपभोग और पूंजी निर्माण से वृद्धि को समर्थन मिल रहा है, जबकि आपूर्ति पक्ष में सेवाओं का योगदान प्रमुख बना हुआ है। विनिर्माण गतिविधि मजबूत हुई है और कृषि क्षेत्र ने स्थिरता प्रदान की है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का हाल का आर्थिक प्रदर्शन दर्शाता है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। अनुकूल मानसून परिस्थितियों के सहयोग से वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि 3.1% रहने का अनुमान है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कुल महंगाई दर घटकर 1.7% रह गई है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में सुधार रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की स्थिति अनुकूल बने रहने का अनुमान है। आनंद और भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नए उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन, संतुलित बजट प्रबंधन और प्रभावी शासन के माध्यम से वर्ष 2025-26 में महंगाई नियंत्रण और आर्थिक सुदृढ़ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ये उपलब्धियां राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था और लोक हितकारी नीतियों का स्पष्ट प्रमाण है। GSDP के लगभग 2.6% के राजस्व अधिशेष के साथ राज्य ने आम जनता के हितों की प्रभावी रूप से रक्षा सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुदृढ़ निगरानी, आधुनिक ट्रैकिंग व्यवस्था और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से खाद्यान्न की निर्बाध उपलब्धता और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित हुई है, जिससे गरीब, किसान और श्रमिक वर्ग को व्यापक लाभ मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 को स्थगित करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ 2026 के विनियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 3 रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि इस बीच वर्ष 2012 के UGC विनियम लागू रहेंगे।
समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कल लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगामी 1 फरवरी से संपत्ति पंजीकरण में आधार प्रमाणीकरण लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।
अब 1 तारीख से उत्तर प्रदेश में हर रजिस्ट्री में आधार के बेस पर चेक किया जाएगा, तो उसके अनुसार लगा करके हम क्रॉस चेक कराएंगे। उस क्रॉस चेक में जो आधार पर उसके पूरे डाटा है इकट्ठा, उसका नाम, लोकेशन, उसका निशान, सब कुछ उसमें आ जाएगा, तब रजिस्ट्री हम लोग करेंगे।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के तत्वावधान में कल से गोरखपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के सदस्य अखिलेश शर्मा ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नवाचार आधारित अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये तत्व समावेशी विकास को गति देने और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई थाईलैंड की रानी चिखुन सिनितात वांग वजीरा पकड़ी ने कल भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल मुकुट बंधन चौत्य की परिक्रमा करके पूजा अर्चना की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। प्रदेश के लगभग 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में प्रस्तुत किया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाती है ये समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए समानता संबंधी नियमों पर लगाई रोक, प्रतिष्ठित न्यायविदों की समिति द्वारा नियमों की समीक्षा का दिया सुझाव। और संपत्ति पंजीकरण में 1 फरवरी से लागू होगा आधार प्रमाणीकरण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।